जनाब अभी अकरम साहब का मजमून मास्को में चार दिन रोजनामा दुनिया में 2 मार्च 2022 को शाया हुआ, आपकी पेश खिदमत है। मेरी नस्ल ने जब आंख खोली तो मास्को दुनिया भर के मजबूर मजदूरों के ख्वाबों की ताबीर समझा जाता था। सोशलिस्ट इनकलाब के बाद लिखे जाने वाले रूसी अदब के जेर असर इस शहर के बारे में तासुर ये बना के यहाँ के गली कूचों में लोग बैठे काल मार्क्स के तसव्वुरात और लेनिन के इक़दामात पर बहस करते होंगे, मजदूर कारखानों से निकलकर लाइब्रेरियों का रास्ता लेते होंगे और वहां बैठकर घंटों हेगल की जरूरियात और एंगल्स के तशरीहात पर तबादला ख्याल करते होंगे। हर चौक पर स्टेडी सर्कल कायम होगा जहाँ कोई इस तरह की कारकुन पेश आमदा हालात पर रोशनी डाल रहा होगा। मास्को का ये तासुर शायद हमेशा के लिए पुख्ता हो जाता कि हमारे होश संभालते ही सोवियत यूनियन ने वायसराय पर हमला कर दिया। उसके बाद मास्को एक जालिमाना निजाम का इश्तेहारा मालूम होने लगा। अब इस शहर के बारे में ऐसा लगने लगा कि जगह जगह KGB सबका सोवियत यूनियन की खुफिया एजेंसी के जासूस लंबे लंबे कोट पहने और आंखों को ढांप लेने वाले हैट पहनकर खड़े होंगे कि जैसे ही कोई मशकूक आदमी नजर आए तो उठा लिया जाए। इस जमाने में मास्को से इस कदर नफरत महसूस होती थी कि जब फैज अहमद फैज को लेनिन प्राइज मिलने के बारे में पता चला तो उनकी शायराना अजमत पर भी कलाम होने लगा। इस शहर नादिदा की मोहब्बत और नफरत में शिद्दत शायद इसलिए भी थी कि हमारी नस्ल को होश संभालते ही एक नजरियाती तसादुम का सामना था। इस तसादुम के दो कुतुब थे, एक वाशिंगटन और दूसरा मास्को। वाशिंगटन जमहूरियत और फिक्री आजादी का निशान था तो मास्को मसावत और खुश हाली का संगी मिल। लतीफा यह है कि टकराव की इस फजा में जमहूरियत और मसावत भी एक दूसरे की जिद मालूम होते थे। जब सोवियत यूनियन टूटा तो मास्को की मोहब्बत या नफरत भी दम तोड़ गई। ये शहर उसके बारे में सारे मुतासाद जज्बे बचपन की खताकारियों की तरह दिलो दिमाग के नहा खानों में जा चुके। ये सारे ख्यालात उस दिन अंगड़ाई लेकर अपनी खुश्क हड्डियां कड़कड़ाते हुए बेदार हुए जब दुनिया टीवी के MD साहब ने फोन पर बड़े आम से लहजे में कहा, यार तुम मास्को तो चले जाओ वजीर आजम के दौरे की कवरेज के लिए। MD साहब के अंदाज बयान की खासियत है कि बात जितनी बड़ी हो उसके लिए लहजा इतना ही आम सा इख्तियार कर लेते हैं। आम से लहजे में कही गई ये बात सुनते ही मेरे तसव्वुरात में दफ्त मास्को यकदम एक जिंदा हकीकत बन गया। तय पाया कि वजीर आजम के दौरे से एक दिन पहले मुझे मास्को पहुंचना चाहिए। चूंकि माजी के बरअक्स इस दौरे के लिए हुकूमत में वसायल फराहम करना थे न सवारी का इंतजाम करना था, इसलिए कुछ आजादी मुयसर थी कि काम के साथ साथ थोड़ा बहुत शहर भी देखा जा सकता था। वो गली कूचे देखे जा सकते थे जिनके बारे में पढ़ते हुए हम बड़े हुए थे। रेड क्रॉस को देखने की ख्वाहिश भी जाग उठी कि जहां कार्ल मार्क्स के ख्यालात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल से निकलकर बाकायदा रियासती नजरिए की शक्ल में ढले थे। क्रेमलिन को देखने की हवस ने भी छुपकर सीने में जगह बना ली और पिछली सदी के अहम तरीन सियासी रहनुमा लेनिन के मकबरे की ज़ियारत पर यूं समझिए ऐसी थी कि इस ख्वाहिश पर कई आरज़ूएं कुर्बान कर दी जाए। कहने को यह सफर सहाफत का हिस्सा था मगर यकीन मानिए मेरे लिए नजरियात की गुम शुदा जहां की बाजियाफ भी था। एक जमाना था मास्को से PIA की बरह रास्त प्रवास चला करती थी। जैसे बहुत कुछ हमारे इज्तिमाई नालाके के अलावा में जलकर खाकिस्तर हो चुका है, ये एयरलाइन उसकी परवाजें भी इसी की नज़र हो चुकी है। इसलिए मुझे किसी गैर मुल्की जहाज के जरिए ही मास्को पहुंचना था। सो तुर्की की एयरलाइन का इंतखाब हुआ जिसने मुझे लाहौर से पहले इस्तांबुल पहुंचाना था और वहां से मास्को। पीर की सुबह 8 बजे लाहौर से सफर शुरू होकर रूस के मकामी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे मास्को में खत्म होना था। पाकिस्तान के हिसाब से 14 घंटे का सफर है लेकिन वक्त के फर्क की वजह से इसमें 2 घंटे की कमी हो गई। इस्तांबुल से मास्को जाने वाला जहाज उस जहाज से काफी छोटा था जिसके जरिए मैं लाहौर से इस्तांबुल पहुंचा था। पहले वाले में 300 मुसाफिरों की गुंजाइश थी, दूसरे में 120 की। एक फर्क यह भी था कि लाहौर से इस्तांबुल जाने वाला जहाज पाकिस्तानियों से भरा हुआ था और मास्को जाने वाले जहाज में मेरे सिवा कोई पाकिस्तानी रुकिया जुनूबी एशिया का भी कोई नहीं था। सभी तुर्क और रूसी कौमियत के लोग थे, जिनके दरमियान मेरी हैसियत काली भेड़ की सी थी। रंग और नस्ल के इम्तियाज को हमेशा से शर्फ आदमी की तौहीद समझने के बावजूद एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि जैसे जहाज में बैठे सभी गोरे दरअसल कौम है और मैं किसी दूसरी कौम से ताल्लुक रखता हूँ। दूसरे ही लम्हे ख्याल कोने की तरह लपका कि मैंने क्यों बगैर किसी के कहे रंगत की बुनियाद पर अपनी शिनाख्त अपने साथ बैठे इंसानों से अलग कर ली, यानी रंग और नस्ल के इम्तियाज का कोई एहसास इन्हें हो ना हो मैंने अपने तौर पर ही खुद को अलग कौम का तसव्वुर कर लिया। गोया रंग नस्ल या दूसरे इंसानों से किसी भी बुनियाद पर खुद को अलग समझने का खन्नास किसी दूसरे के जहन की पैदावार नहीं, मेरी ही जहनियत का फुतूर है। ख्वा मैं खुद को बरतर समझ कर इजहार करूं या कमतर जानकर, खैर छोड़िए इस बात को, मुझे लगता है शिनाख्त और तासुर का ये बारीक मामला साहबी के तय करने का नहीं, उसे या सिर्फ पीरज़ादा वजाहत मसूर या खुर्शीद नदीम जैसे दानिशवरों के लिए ही छोड़ देना चाहिए। मॉस्को में दो एयरपोर्ट हैं, जिस एयरपोर्ट पर मुझे उतरना था उसका नाम वेको है। मकामी वक्त के मुताबिक ठीक रात 8 बजे वहां पहुंचा तो एयरपोर्ट पर कोई ऐसी निशानी मौजूद नहीं थी जो सोवियत यूनियन की अजमत रफ्तार की गवाही देती या जिसे नए रूस की अलामत करार दिया जा सकता। सादा सा एयरपोर्ट था, इमिग्रेशन पर ज्यादातर नौजवान मुकर्रर थे। वैसे तो दुनिया भर में कहीं भी जाए इमिग्रेशन का मरहला ख्वामखा मुश्किल मालूम होता है, कम से कम मुझे इस मरहले की तकमील तक वसवसे ही घिरे रहते हैं। यहाँ तो मामला कुछ गंभीर था। मैं कतार में खड़ा देख रहा था कि इमिग्रेशन ऑफिसर आंख के साथ अंडे के बराबर एक आला लगाकर हर पासपोर्ट को का मुआयना करता। गालिबन ये खूबीन जैसी कोई चीज थी। इस मुआयने के पासपोर्ट वाले से निहायत सर मेरी से कुछ पूछता और फिर जान देता। खैर मेरी बारी आई तो काउंटर पर बैठे नौजवान ने मेरे पासपोर्ट का भी इसी तरह जायजा लेना शुरू किया तो दिल धक से रह गया। न जाने क्या कुछ देखा, उसकी भवें सुखनी हुई थी जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर देखना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद उसने पासपोर्ट पर मोहर लगा दी, मेरी सांस में सांस आई और मैं एयरपोर्ट से बाहर चल पड़ा। जैसे ही एयरपोर्ट की मार से बाहर निकला बर्फीली हवा के थपेड़े ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान सिफारत खान के प्रेस डिपार्टमेंट की भेजी हुई गाड़ी मुझे लेने के लिए आई थी। गाड़ी तक पहुंचते हुए सर्दी ने हालत गैर कर दी। सड़क के दोनों तरफ बर्फ की 5-5 फीट ऊंची पहाड़ी नुमा ढेर पड़े थे जो दरअसल सड़कों पर गिरी बर्फ इकट्ठी करके बना दिए गए थे। एयरपोर्ट से बाहर निकले तो शहर पर जो पहली नजर पड़ी उसने कुछ अच्छा तासुर नहीं छोड़ा। दिल की बात तो यह है कि मैं कुछ मायूस हो गया था। मास्को तो बिल्कुल आम सा शहर लग रहा था। ये अभी जारी है।